اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں کہ تم جس چیز پہ تم خرچ کرتے ہو وَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اس میں کوئی نام نہ بھی پتہ چلے اللہ کو پتہ کون ہے. الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں میں کرتے ہیں. آج جو لوگ ڈپریس ہیں نا ان کا علاج بتایا گیا, صدقہ دو. خالو ہم دیتے ہیں صدقہ کب, جب ہمیں کو برا خواب آ جاتا ہے اور اس طرح سے آتا ہے. آپ دیکھیں کہ علم کے اوپر جب انسان یا اس طرح کی اجتماعی چیزوں پہ خرچ کرتا ہے نا تو ساری انسانیت کا فائدہ ہو جاتا ہے, اور انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کی خیر دنیا میں دکھتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے. اب اس کے بعد بدترین قسم, مال کی بدترین قسم ہے سود. یہ آیتیں پڑھتے ہوئے پھر دل بہت زیادہ بوجھل ہوتا ہے, لیکن بہرحال آج امت اسی میں کھو گئی. آج صدقے کے لیے ہاتھ کیوں نہیں کھلتے کہ سود کی قسطیں دینے سے پوری نہیں پڑتی. آئیے اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں اور دعا کریں گے ایگزیجریشن کے بغیر جو اللہ کی مرضی اور منشا ہے اس کے مطابق ان آیتوں کو سمجھیں. آیت 275, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس. ایک طرف تو صدقے کی بات تھی, مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے, امیجن کیجئے گا, جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. اردو میں کہتے ہیں نا جن چمٹے میں, چلا دیوانہ کریزی, یعنی ایسے ہلتا جلتا. اور اس حالت میں اس کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی کی جیسی چیز ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. وہ کہتے ہیں تجارت اور سود ہے کہ اللہ کہتے ہیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بس کیا کرو, فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف, لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باس آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. یعنی پہلے جو ہوا جانے دو, اسلام کا خوبصورت مزاج ہے. پہلے نہیں پتا تھا, کر چکے کر چکے, اس میں سے اصل مال تمہارے لیے. لیکن اب جو کوئی اس کے بعد اس حصے کو ہائی لائٹ کیجیے گا, وَمَنَا دَفَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کو دوہرائے, یعنی پھر سود کے لین دین میں ہو, تو وہ جہنمی ہے. کون سی جہنم؟ جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. چار چیزیں سود کی برائی, لفظ حرام موجود ہے, جہنم موجود ہے, ہمیشگی موجود ہے, اور یمحق اللہ الربا, اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے سود دنیا میں ختم ہو اور صدقات عام ہو. اور اس کا دوسرا معنی بھی ہے کہ جہاں سود کا مال لگ جاتا ہے وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے, اور اللہ کسی نہ شکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. اس کے برعکس جو یہ ساری باتیں سن کر توبہ کریں, اپنے معاملے کی اصلاح کریں, تو ان کی تعریف کی گئی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کریں, واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, تو ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی مقام نہیں. یہ تھی سود کی آیت. سود کیا ہے؟ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. اس کی ڈیٹیلز تو آپ نہیں کر سکتے, ناممکن ہے, لیکن آپ اس کی تفسیر ضرور سنیے گا. اگر آپ کو موقع مل سکے تو تسویل الجنہ کے سیٹ میں سے ان آیتوں کی تفسیر سن لیں. آج انسانیت اس سود کے تحفے میں اتنی پریشان ہے. اکنامک ڈس آرڈر دیکھ لیجیے, اس طرح کی اکنامیکل ٹیررزم ہے, اور ایسی سونامی ہے اس دنیا میں سود کے نام کی, جس نے آج قوموں کو غلام بنا لیا. حکومتیں غلام ہیں, دنیا کی دولت چند ہاتھوں کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ نے سود کو کیوں روکا؟ کیونکہ اس میں امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ کسی کو قرض دیں اور اس قرض پہ جو ایکسٹرا مال ہے وہ سود ہے, کس ضمن میں آپ اس سے لیتے ہیں؟ پیسے پہ پیسہ کھینچنا, آپ ایسے سوچ لیجئے کہ آپ نے پیسے دیے اور آپ نے یہ پیپر خرید لیا, پیسے کے بدلے میں پیپر خریدا نا. مثال ہے کہ آپ نے 50 پینی دی اور آپ یہ بک مارک خرید کے لے آئے, 50 پینی کے بدلے میں یہ خریدا. کبھی آپ نے یہ کیا کہ 50 پینی لو اور مجھے, میں اس کے بدلے میں 60 پینی خریدنے آیا ہوں. سمجھ آئیے؟ یہ ہے سود. پیسے سے پیسہ خریدتے ہیں. یعنی آپ 10 پاؤنڈ لے کے جائیں اور کسی سے کہیں مجھے 10 پاؤنڈ کے پیسے دے دو, तो 10 पाउंड का खुला दे देगा ना, ठीक है, छोटे नोट दे दे, बड़े दे दे, इट्स ओके। लेकिन 10 पाउंड के अगर कोई आपको 11 पाउंड दे दे, ये सूद है। बस ये है छोटी सी कहानी। पैसे पे पैसा, ये मजबूरी है, ये किसी की मजबूरी को खरीदना है। ये ऐसे कभी हुआ कि आप ये चीज़ है 50 पाउंड की और आप कहें कि ये 60 पाउंड की दे दो, बेवकूफ़ी लगेगी ना। तो ये हम करते हैं सूद के मामलों में। और इस तरह नस्लें गिरवी हैं। हदीस में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात गए तो आपने देखा कि कुछ लोगों के पेट बड़े बड़े मटकों की तरह शीशे के, और उनके अंदर सांप दौड़ रहे हैं। जिब्राइल से पूछा ये कौन लोग हैं, फरमाया ये लोग हैं जो सूद का लेन देन करते थे। कुछ दूर गए तो आपने देखा कि खून की नहर है और उसमें कुछ लोग डुबकियाँ खा रहे हैं। बड़ी मेहनत करके बेचारे मुश्किल से बाहर आते हैं, बड़ी मुश्किल से सूद की किस्तें दी जाती हैं, आसान नहीं है। जब बाहर आते हैं तो बाहर एक फिर फरिश्ता है जो फिर पत्थर मारता है उसको, और वो वापस उस खून के अंदर लौटने पौटने लगता है। पूछा ये कौन है, कहा ये सूद का मामला करने वाला। हदीस में आता है 4 चीज़ों पे सूद की वजह से अल्लाह ताला ने लानत की है। आ किलू हो व मुँह किलू हो का तिबू हो व शाहिद हो। सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, उसकी गवाही देने वाला और लिखने वाला, सारी जॉब सारी इसमें आ गई जिसमें सूद का लेन देन है। हम सूद लेते नहीं लेकिन देते हैं, तो इसमें आ गए। इससे बढ़ के क्या रह गया? देखिए सूद इस्लाम का सबसे सख्त इशू है। बल्कि एक जुमला शौर से बोलूँगी और आप शौर से लिखिएगा कि अल्लाह के मामलात में सबसे बड़ा गुना शिर्क है और इंसानी मामलात में सबसे बड़ा गुना सूद है। फाज़नु बिहर्ब मिन अल्लाह पढ़ा है अपने भी, अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ाई है। हदीस में आता है क़यामत के दिन ऐसे लोगों के हाथों में तलवारें तीर दिए जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा जो अल्लाह के साथ लड़ो। आज लड़ते हैं हम, इसलिए दुखी हैं आज, इसलिए हमें ओवर टाइम लगाने पड़ते हैं, इसलिए आज हमारे घर महंगे हैं। ये इतने छोटे छोटे घर क्यों इतने महंगे हैं? ये सूद का एक समरा है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे सूद ने आज इंसानों का जीना मुहाल किया हुआ है। आप तो इसको समझते नहीं, ज़रा सा इल्म लेके देखें, उबकाइयाँ आती हैं इस माहौल। तुफ कहने को दिल करता है कि आज मुसलमान गाड़ी सूद पे, घर सूद पे, सोफा सूद पे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। छोटा सा सांप का बच्चा निकला किसी के घर में तो उस घर में आप नहीं जाएंगे, खौफ आएगा आपको। और कहाँ सांपों के बिच्छुओं के घरों में कोई रहे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखिए ये बातें कड़वी हैं पर मैं हर साल की तरफ भी कहूँगी, क्योंकि बंदगी के रंग में रंगा हुआ कभी अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई नहीं कर सकता। आज कौन खुश है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसके सर पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं। और दुख की बात देखिए, सबसे बड़ा दुख ये है, पहले दौर में लोग कर्ज लेते थे मजबूरियों के नाम पे, घर नहीं है, खाना नहीं है, होता था ना, हम सब सम सुनते आए बचपन से, बेचारी गरीब मासियाँ कर्ज लेती थी। आज कर्ज कौन लेता है और कर्ज पे घर कौन लेते हैं जिनके पैसा भी होता है? अजीब बात है कि अमीर लोग कर्ज ले रहे हैं और गरीब बेचारे कहते हैं चुप करके बैठे रहो, इसी में गुजारा करें। रेड़ी लगाने वाला अगर दिन में 500 रुपये कमाता है तो उसी में खुश है कि चलो 500 में से 200 खा लूँगा, 300 का कल फिर फल लेके जाके बेच लूँगा, वो खुश है। और जिसके बैंक में 5 मिलियन है वो कहता है कभी बैंक से मुझे सूद मिल जाए। हमारे एक साथी थी तो उन्होंने मैं बताया, यानी किसी की कहानी से, तो एक दिन इतना बड़ा मिठाई का डब्बा लेके कि फलां ब्रदर का आज लोन अप्रूव हुआ है, तो उसने उस खुशी में सारे बैंक वालों को मिठाई खिलाई है। फाज़नु बिहर्ब मिन अल्लाह व रसूली। कभी उम्मत वसत नहीं बनेंगे, लिख लें, कभी बंदगी नहीं आएगी। सारे दौरे कुरान कर लें, तरावियाँ पढ़ लें, तजदे पढ़ लें, लोगों की इफ्तारियाँ कराएं, उम्रे करें, हज करें। अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, अल्लाह की कसम खा के कह सकती हूँ, जब तक हमारी ज़िंदगी से सूद नहीं जाएगा हम कभी सुकून नहीं पाएंगे, बीमारियाँ नहीं जाएंगी हमारे घर से। सूद वाले घर में बीमारी आएगी, सूद वाली गाड़ी की प्रॉब्लम होगी। मैं नहीं कहना चाहती, लोगों का दिल टूटता है इन बातों से, पर मैं क्या करूँ। आप सूद दे के बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, कैन यू बिलीव? ये सेकुलर इल्म कैसे आपके बच्चों को आबूद बनाएगा, माबूद बनाएगा, जिसकी बुनियाद सूद वाले कर्जों पे? किधर फंस गया, जब सांस नहीं निकल रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि सब तरफ सूद होगा, और जो सूद से बचेगा भी ना उसको भी उसका गुबार आएगा। क्या आज वो वक्त नहीं है? एक पैदा होते बच्चे का जो दुनिया में आने का खर्चा है, डिलीवरी का और जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं, उसमें सूद शामिल है। कभी आपने सोचा, जब कोई मरता है लोग कहते हैं क्या छोड़ा, बोलिए सूद छोड़ा, सूद की किस्तें छोड़ी, कर्ज छोड़ा। ये घर आपका थोड़ी है जो 20 साल में जाना है, ये तो गरीब बच्चों को आपने मुश्किल में डाल दिया कि पहले हम भुगतते थे अब तुम भुगतो। ये तो मैं आपको दीन के लिए हिला रही हूँ ना, कभी मैं आपको दुनिया के फिगर्स बताऊं ना, तो बेवकूफ से बेवकूफ, कम से कम अकल का कारोबारी कभी सूद पे लेन देन नहीं करेगा। जो घर आप कहते हैं कि 3 लाख का मिलता है, कहते हैं ना 3 लाख का घर मिलता है, मिसाल है, वो 3 लाख का कब मिलता है? जब आज ही आप उनको कैश 3 लाख दे दें। आप 20 साल की किस्तों में जाके आज घर बैठ के जाके अपने घर की कीमत निकालें, डाउन पेमेंट जो दी थी वो लगाएं, हर महीने जो किस्त देते हैं और उसको जरफ देने 20 साल या 25 साल से, 3 लाख का घर आपने 6 लाख में खरीदा आज, 6 लाख, 20 साल बाद वो आपका अगर हुआ तो आपने क्या कमाल कर लिया। अक्ल में नहीं आती ये बात, मैं सोचती हूँ कि लोगों के मैथमेटिक्स किधर चले जाते हैं। एक सिस्टर थी तो उनके कुछ इस तरह के मामला थे कि अपने किस दुख कर रही थी और उसका मसला पूछ रही थी, तो कहती अफसोस की बात है कि उनके पहले घर हैं, फिर एक और घर लिया। मैंने कहा वो क्यों ले रहे हैं? तो कहती वो क्या घर लेंगे तो किराए पे चढ़ा देंगे, फिर क्या होगा, जो किराया होगा उससे किस्तें दूर होती रहेंगी, तो इस तरह सुंदर और लेटर घर आ जाएंगे। और यहाँ की बात नहीं है इसलिए आप परेशान ना हो, किसी और मुल्क की बात है। तो मैंने कहा कि और घर? कहती हाँ, हर बच्चे के पास भी घर है, हर बच्ची के पास भी घर है, तो अब एक्स्ट्रा घर ले रहे हैं। तो फिर कहती लेकिन मसला क्या? मैंने कहा मसला क्या? कहती लेकिन हर घर किस्तों पे। तो चूंकि अब ये स्टूडेंट थी, इन्होंने कुरान पढ़ लिया, इन्होंने कहा कि मैं उनको बता रही हूँ कि आप और नए घर लेते हो और जायदादें बनाते हो, उसकी जगह पहला घर आजाद करा लो। कहते नहीं बेवकूफ हो तुम, पागल हो, हमारे इतने घर बन रहे हैं, सिर्फ बाहर के स्केलेटन बन रहे हैं, अंदर आपका नहीं है। तो दुआ कीजिए आज उम्मत इस नासूर से हट जाए, इसने आज घरों में बीमारियां और दुख और गम और डिप्रेशन और तकलीफें, और ये हार्ट अटैक है। मुझे वो ब्रदर नहीं बोलते जिन्होंने कहा ये घर मेरी जान ले गया, इस घर ने मेरी सारी कमाई खा ली, फिर मेरा नहीं बना। और आप आजमा के देखें, जब ये घर बिकते हैं ऐसे घर, आप हैंड टू माउथ ही रहते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह का खौफ हमें आ जाए और हम बंदगी का ये रंग लें, सबसे तेजाब वाला रंग है जो आज उम्मत को लगता है। समझ ही नहीं आती ये बात। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो फिर आखिरी आयत पढ़िएगा और गौर कीजिएगा इस पे, आयत 278। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डर जाओ और छोड़ दो वो जो रह गया बाकी सूद में से, छोड़ दो इस काम को। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, वाकई मोमिन हो तो छोड़ो, छोड़ते हो, नहीं छोड़ते तो फिर सुन लो। फ़इल्लम तफ़लू फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि वरसूली। और अगर तुमने ऐसा न किया, लिखिए जरा, लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया, इसके नीचे हाईलाइट करके अकेले में बैठ के अपनी सारी डील्स लिखिए जिसमें ये मामला। और अल्लाह कहता है ये सुन के भी नहीं माने तो कोई बात नहीं, फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि वरसूली, तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। सच बताइए, जंग लगी हो, एक तरफ अल्लाह रसूल और दूसरी तरफ सूद खोर और ख्वार, दोनों कौन जीतेगा? अल्लाह जीतेगा, उसका रसूल जीतेगा और वह जीत रहा है। और याद रखिए ये मुस्लिम्स का मसला नहीं रहा आज। जापान जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क इस वक्त मजबूर हो गया कि 0% इंटरेस्ट रेट कर दे, इनकी इकोनॉमी खाई गई अंदर से। मैं नाम नहीं लेती लेकिन बड़ी बड़ी पावर्स हैं आज हैंड टू माउथ हैं, खोखली हैं अंदर से, खा गए इनको सूद। आज आप देखिए कि वो खुद कह रहे हैं कि इसको नीचे करो, कम इंटरेस्ट रेट करो, क्योंकि ये इंसान को ज़ाया कर देता है। हमें तो इन चीज़ों की परवाह नहीं है कि वो छोटा करो या ज़्यादा, हमें ये फिक्र है कि ये अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। और अब भी तौबा कर लो और सूद छोड़ दो, फाइन तो तुम तो क्या होगा, फलकुम रुसुम वालिकुम, अपना असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो, न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाए, तुम्हारे कर्जदार तंग दस्त हो तो हद खुलने तक उसे मोहलत दो, और जो सदका कर दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और अगर तुम समझो, ये कर्ज की बात आ गई, सूद खोर गरीब का खून निचोड़ता है, अल्लाह कहता है कर्ज खा को मोहलत ही दे दो। अब सूद के बाद कर्ज की तरफ मामले आने लगे, कर्ज ले लो मजबूरी है लेकिन बगैर दूसरी चीज़ों के। आखिरी आयत तरतीब के अतबार से कुरान के नजूल की लिखिए, आयत 281। साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी की जिंदगी की आखिरी आयत है, और जरा इसका मफहूम तो समझिए। वत्तकु यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, और डर जाओ उस दिन की रसवाई से, उस दिन की रसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरह वापस हो गए, वहाँ हर शख्स को इसकी कमाई हुई नेकी का बदला पूरे का पूरा मिल जाएगा और किसी पर जुल्म न होगा। है उस दिन की रसवाई का फिक्र? आप सोचिए कितनी जुमानी आयत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की रसवाइयों से बचाए। आमीन।